नजायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्यः शाश्वतोयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मतत्व न पैदा होता है न मरता है, वह नित्य अज शाश्वत पुराण है। आत्मा की अमृत रूपता आचार्य यम इस श्लोक में प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी अनुभूति आकार की है, हमारी इंद्रियां बाह्य पदार्थों को ग्रहण करती हैं, और जहां तक बाह्य पदार्थों को ग्रहण करती हैं वहां तक सब जन्य पदार्थ हैं। जन्य पदार्थों की अनुभूति है, और आत्मतत्व अतीन्द्रिय और अजन्य है, वो व्यापक हैं, वो निष्क्रिय हैं। आगे श्रुति कहेगी अणोरणीयान महतो महीयान, वो अणु से भी अणु है और महान से भी महान है। आचार्य यम ने नजायते कहकर आत्मा में जनिक क्रिया का अभाव बताया। जो उत्पत्ति रूप जो क्रिया है उस क्रिया का आधार आत्मा नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति रूप क्रिया का जो आधार वस्तु होती है उसी वस्तु की उत्पत्ति बोलते हैं हम, और आत्मतत्व उस क्रिया का आधार नहीं है। जिस वस्तु में क्रिया होती है वो वस्तु क्रिया का आधार बन जाती है। ये सबसे विशेष बात है। जो वस्तु परिच्छिन्न होती है वो क्रिया का आधार होती है, और जिस वस्तु में क्रिया होती है उसमें विक्रिया पैदा होती है। ये हमारे सामान्य पदार्थों का नियम है, और हमारे जीवन में हर समय इसका अनुभव होता है। जो वस्तु परिच्छिन्न है वो वस्तु क्रिया का आधार है, और जिसमें क्रिया होती है उसमें परिवर्तन है। वस्तु परिच्छिन्न है इसीलिए उसमें आवागमन की क्रिया है। बिना क्रिया वस्तु का सरकना, वस्तु का परिवर्तन, वस्तु का विकास संभव नहीं है। बिना क्रिया आप एक इंच भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। मैं आपसे कितना भी आग्रह करूं कि आप हिले नहीं और थोड़ा आगे बढ़े, आप कितना भी कोशिश करें, कोशिश का ही मतलब क्रिया है। आप बिना क्रिया एक इंच भी आगे पीछे नहीं हो सकते हैं। इसलिए वस्तु को अपनी जगह से सरकने के लिए अथवा अपनी जगह पर रहते हुए भी विकृत होने के लिए, परिवर्तित होने के लिए उसमें क्रिया का होना बहुत जरूरी है। जैसे उदाहरण में हमारे पास दूध है, तो उस दूध को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना है तो भी उस दूध में क्रिया का होना बहुत जरूरी है, और जहां पर है वहीं विकृत होकर दही बनने के लिए भी उसमें क्रिया का होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारा शरीर है, एक जगह पर है दूसरे जगह पर ले जाना है उसमें क्रिया बहुत जरूरी है, और जहां पर है वहीं से उसको परिणाम को प्राप्त कर, विकार को प्राप्त कर, अन्य अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए भी उसका सक्रिय होना बहुत जरूरी है। ये शरीर में यदि क्रिया न हो, ये शरीर क्रिया का आधार यदि न बने, तो ये शरीर बूढ़ा कभी नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि दुनिया की सारी चीजें क्रियाजन्य हैं, दुनिया की सारी चीजें कर्मजन्य हैं। एक बीज है और उस बीज में यदि क्रिया ना हो तो कभी अंकुर नहीं बनेगा, उस अंकुर में क्रिया ना हो तो कभी वो पौधा नहीं बनेगा, वो बढ़ेगा नहीं, वो फूलेगा नहीं, फलेगा नहीं। और उसकी जो मिटने की प्रक्रिया है, बढ़ने की प्रक्रिया है, वो भी थम जाएगी। इसलिए उसमें क्रिया का होना बहुत जरूरी है। ये हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो अनेक अवस्थाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक, सारी चीजें क्रियाजन्य हैं। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने भी बोला है कि ये सारा जगत जो है ये कर्म पर आधारित है, क्रिया पर आधारित है। क्रिया वस्तु को बनाती है और क्रिया वस्तु को बिगाड़ती भी है। अब इस क्रिया को आप पुरुषार्थ भी तो कह सकते हैं, ये क्रिया हमारा पुरुषार्थ भी है। इसलिए भगवान ने गीताजी में बार बार बोला, करो 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 करो, बिना किए संसार की उपलब्धि और बिना किए आत्मोपलब्धि भी संभव नहीं। वस्तुतः आत्मोपलब्धि कुछ नहीं करने का नाम है, आत्मोपलब्धि नैष्कर्म है। आत्मोपलब्धि में क्रिया का अभाव है, लेकिन नैष्कर्म में प्रवेश करने के लिए भी कर्म की जरूरत पड़ती है। नैष्कर्म को समझने के लिए भी क्रिया की जरूरत पड़ती है। हमें उन्हें समझना है, उस तत्व को समझना है। और समझने की जो उपकरण साधन है, साधन के बिना, उपकरण के बिना, और एक तीसरी चीज इसमें समझ लेना चाहिए, वस्तु सक्रिय हुए बिना वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकती हैं, या वो स्वयं भी किसी रूप में पैदा नहीं हो सकती हैं। इसलिए क्रिया का आधार हो, और दूसरा उसको सक्रिय होने के लिए कुछ उपकरण चाहिए, कुछ निमित्त चाहिए। बिना निमित्त तो कोई सक्रिय भी कैसे होगा, कोई ना कोई निमित्त चाहिए उसको सक्रिय करने के लिए। और उस वस्तु का परिचिन्न होना भी बहुत जरूरी है, वस्तु को परिचिन्न होना भी जरूरी है। यदि वस्तु परिचिन्न ना हो तो वो क्रिया का आधार नहीं बन सकती है। मैंने एक दिन आपको उदाहरण बताया था, आदमी जितना मोटा होता जाता है उतना अपनी सक्रियता कम करता जाता है, और जितना आदमी दुबला पतला होता है उतना ज्यादा सक्रिय होता है। इसलिए कभी आपने ध्यान दिया होगा, एक दुबला पतला आदमी दौड़े और एक मोटा आदमी दौड़े, कौन ज्यादा दौड़ेगा? जो दुबला पतला है वो तेजी से दौड़ेगा, क्योंकि वो छोटा है, उसमें भार नहीं है, बोझ नहीं है, उसमें प्रतिबंध कम होंगे, दौड़ने के प्रतिबंध कम होंगे। और जितना बड़ा आदमी होगा, इसलिए वस्तु को सक्रिय होने के लिए उसमें परिच्छिन्नता होना बहुत जरूरी, उसकी एक सीमा होनी बहुत जरूरी है। जैसे आप कुल्ला करते हैं, ये दृष्टांत बहुत सुंदर है। आपको कुल्ला करना है, छोटे छोटे बच्चे कुल्ला करते हैं, कभी आपने ध्यान दिया होगा, बच्चे को बोलना कुल्ला करो, वो पूरा मुख भर के पानी ले लेता, मुख भर के, और उसको उसकी मां बोलती है अब उस पानी को अंदर घुमाओ, चलाओ, अंदर पानी चलेगा मुख में तो अन्न के कण चले जाएंगे। लेकिन वो बच्चा पानी नहीं घुमा पाता है, क्योंकि वो पानी पूरा मुख भर के ले लेता है, उस पानी को घूमने के लिए जगह नहीं अंदर। तो बच्चा क्या करता है, पूरा मुख घुमा लेता है, वो पूरा मुख घुमा लेता है। तो आपको पानी कम लेना पड़ेगा, कुल्ला करना है तो पानी आपको कम लेना पड़ेगा, जगह देनी पड़ेगी, उसको घूमने के लिए जगह देनी पड़ेगी। ये तो वस्तु का परिछिन्नपना है। इसलिए आत्मा में क्रिया क्यों नहीं है? आकाशवत सर्वगतश्च नित्य। श्रुति कहती कि आत्मा आकाश की तरह सर्वगत है। आपने कभी आकाश को इधर से उधर होते हुए नहीं देखा होगा? कभी तो आपने पृथ्वी को देखा होगा, देखते हैं, जल को आप देखते हैं, वायु को देखते हैं, अग्नि को देखते हैं, चारों भूत इधर से उधर होते हुए हमें दिखाई देते हैं, हमारे अनुभूति के विषय हैं। लेकिन आकाश तत्व इधर से उधर नहीं होता है, वो व्यापक तत्व है। इसलिए आत्मा को समझने के लिए श्रुति ने आकाश तत्व का उदाहरण दिया। आकाश व्यापक होने से माने परिछिन्न न होने से उसमें कोई क्रिया नहीं, क्रिया का आधार नहीं है वो, और क्रिया का आधार नहीं इसलिए उसमें विक्रिया नहीं है। उसमें विक्रिया न होने के कारण वो जन्म नहीं है। जन्म का आधार वो वही वस्तु बनती है जिसमें क्रिया हो, और उसमें यदि कोई क्रिया ही ना हो तो उसमें जन्म नहीं है, उसमें परिवर्तन नहीं, उसमें विकार नहीं। जो आपको मैंने चार प्रकार के विकार बताए थे वो उसके अंदर नहीं है। इसलिए यहां पर आचार्य यम कहते हैं कि आत्म तत्व न जायते व्यापकत्वात् अक्रियत्वात्। वो व्यापक हैं, वो अक्रिय हैं, इसलिए उसमें कोई क्रिया नहीं, और क्रिया न होने के कारण न जायते। वस्तु को उत्पन्न होने के लिए कोई क्रिया होना चाहिए, उसमें क्रिया का आधार होना चाहिए। और जो वस्तु उत्पन्न होती है वो वस्तु कालिक होती है, वो वस्तु देशिक होती है। आप इस चीज को समझे, हमारे यहां पर तीन चीजें हैं वेदांत में। वस्तु परिच्छेद, ये वेदांत के टेक्निकल शब्द हैं। दुनिया की किसी भी आप चीज को देखेंगे उसमें वस्तु परिच्छेद है, उसमें देश परिच्छेद, उसमें काल परिच्छेद। इसी को हम कह सकते हैं कालाक्रांत, देशाक्रांत, और वस्तु सावयव है। हम अपने शरीर को ही देख लें, ये वस्तु परिच्छेद से युक्त हैं। वस्तु परिच्छेद का अर्थ होता है उस वस्तु के अंदर विभाजन है, वस्तु अखंड नहीं है। जैसे हमारा जो शरीर है ना, ये शरीर अखंड नहीं है, ये अनेक वस्तुओं का समूह है। इसलिए आप उसका विभाजन कर सकते हैं, ये हाथ हैं, ये पैर हैं, ये नाक है, ये कान है, ये दांत हैं, ये मुख हैं, ये बाल हैं, अनेकों अनेकों इकाइयों का एक समूह है। इसलिए इसको बोलते हैं वस्तु परिच्छेद। आप इस वस्तु को टुकड़ों में भी समझ सकते हैं और टुकड़ों में कर भी सकते हैं, इसको अलग अलग कर भी सकते हैं। इसलिए शास्त्र ने कहा कि आत्म तत्व में वस्तु परिच्छेद नहीं है। आपने अक्सर बहुत जगह पर सुना होगा है, आत्म तत्व में वस्तु परिच्छेद नहीं है। वस्तु परिच्छेद नहीं माने उसके आप टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर कोई अवयव नहीं है, वो अखंड एक रस, वो तत्व जो अखंड एक रस है उसके अंदर अवयवों का भेद नहीं। और दुनिया की सारी चीजें ये वस्तु परिच्छेद से युक्त हैं। और दूसरा परिच्छेद है देश परिच्छेद। जो वस्तु आपके दृष्टि का विषय है, एक सीमा में आबद्ध है, परिच्छिन्न है, वो वस्तु किसी देश में होती है, किसी देश में नहीं होती है। एक समय में आप एक देश में रह सकते हैं, आप घर में नहीं हैं। अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप अभी घर में नहीं हैं। आपके घर में अभी नहीं गया हूं, और उसके बाद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अभी घर में नहीं हैं, क्योंकि आप यहां हैं। यदि आप यहां हैं तो घर में नहीं हैं पक्का, और यदि घर में होंगे तो यहां नहीं होंगे। एक समय में आप एक ही जगह पर रह सकते हैं, इसी को बोलते हैं देशकृत परिच्छेद। किसी देश में हमारा अस्तित्व होना और किसी देश में हमारा अस्तित्व नहीं होना, लेकिन ये देश परिच्छेद आत्म तत्व में नहीं है। सर्व देश में आत्म तत्व है, वो व्यापक है ना, अत्यतिष्ठत दशांगुलम, वो व्यापक है, अनोरणीयान महतो महियान, बड़े से बड़ी चीज को भी व्याप्त होके हैं और वो छोटी से छोटी चीज के अंदर भी है। इसीलिए वो देश परिच्छेद नहीं, ऐसा कौन सा देश जिसमें आत्म तत्व नहीं है, परमात्मा तत्व नहीं। अच्छा एक बात मैं आपको पूछ लेता हूं, आप अक्सर एक बात बोलते हैं भगवान कृष्ण द्वारका से आए बोलते हैं, तो क्या भगवान श्री कृष्ण को द्वारका से आना पड़ेगा क्या? यदि भगवान को प्रकट होना है, भगवान कृष्ण की घोषणा है मया ततमिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना। भगवान कहते कि ये सारी जो दुनिया है मेरे से व्याप्त है, मैं कनकन में हूं, कनकन में हूं। विश्वरूप दिखाया भगवान ने, मां को भी दिखा दिया, यशोदा मैया को भी दिखा दिया, एक बार नहीं कई बार दिखा दिया, अर्जुन को भी दिखा दिया। विश्वरूप का अर्थ कोई चमत्कार नहीं था, विश्व ही परमात्मा का रूप है। एक इकाई में सारा विश्व दिखा दिया, मां को बोला मां ये सारी दुनिया जिसको तुम बोलती हो ना, अरे वो तो मैं ही हूं, मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, उसके अंदर मैं हूं, मेरे अंदर वो है, और वो चीजें एक है, कोई अलग नहीं है, विश्व ही मेरा रूप है। तो क्या उस परमात्मा को आपके सामने प्रकट होने के लिए वो द्वारका से यहां आना पड़ेगा क्या? वहां से कृष्ण को यहां आने की जरूरत नहीं है, केवल आपका संकल्प हो और वो जहां है वहीं प्रकट हो सकते, केवल उनको प्रकट होना है कि आना है? भगवान को केवल आना है कि प्रकट होना है, उनको आने की जरूरत नहीं है, केवल उनको प्रकट होना है। जैसे दूध में दही में मक्खन है, उस मक्खन को पैदा करना है कि केवल प्रकट करना है? आप जब उसको मथते हैं तो करते क्या है? उसको पैदा नहीं करते, आप उसको प्रकट करते हैं। ऐसे द्रौपदी ने पुकारा भगवान को, तो भगवान को वहां से बुलाया कि वहीं से प्रकट किया? अरे वो सत्ता वहीं है, और कृष्ण को ही मालूम है कि मैं वहां भी हूं और यहां भी हूं, वहां से यहां आना पड़ेगा क्या उन्हें? एक बड़ा सुंदर मजेदार दृष्टांत है भगवान श्री राम का। एक बार मां कौशल्या भगवान विष्णु की आराधना कर रही हैं और भगवान श्री राम बहुत छोटे हैं, पालने में माने सुलाया, बहुत छोटे पालने में सुलाया, अभी तक तो वो बैठने इतने भी बड़े नहीं हैं। मां ने भगवान की पूजा अर्चना कर भगवान को भोग लगाने लगी और मां ने भगवान का आह्वान किया बहुत प्रेम से गदगद होके, आंख बंद कर आह्वान की मां, और जैसे आंखें खोली मां ने तो मां आश्चर्यचकित रह गई और संदेह में पड़ गई, आशंकित हो उठी, क्योंकि प्रभु श्री राम मंदिर के अंदर बैठकर वो लड्डू खा रहे थे। मां ने सोचा कि अब तो ये लड्डू जूठे हो गए, अब भगवान को भूख कैसे लगेगा? मां आशंकित हो गई और वो सोचने लगी, अरे रे रे तुमने खा लिया, ये जूठे हो गए, अब मेरे को दूसरे बनवा के दूसरे लड्डू लाके भोग लगाना पड़ेगा। वो सोचने लगी मां, अचानक मां के मन में आया, नहीं नहीं वो तो पालने में सो रहा है और वो इतना छोटा है कि पालने से नीचे नहीं आ सकता है, यहां तक कैसे आएगा? मां को फिर आशंका हो गई कि वही है कि दूसरा है, ये हुआ क्या, मेरा दृष्टि का भ्रम तो नहीं? मां उठी और दौड़ते हुए गई और पालने में देखा, वहां श्रीराम सो रहे थे। मां को लगा कि वहां देखी थी मैंने, वहां भोग वो लड्डू खा रहे थे बैठकर और यहां सो रहे हैं। मां को पुनः आशंका हुई, दौड़ती हुई मां पुनः वहां गई, वहां भी देखी लड्डू खा रहे हैं, वहां लड्डू खा रहे हैं, यहां सो रहे हैं। मां दिग्भ्रमित हो गई, आशंकित हो गई। और उसके बाद फिर प्रभु ने दिखाया कि मैया जो सो रहा है वही यहां लड्डू खा रहा है, और जो सोया हुआ है उसको यहां आने की जरूरत नहीं है, वो वहां से यहां नहीं आए बिना भी प्रकट हो सकता है, क्योंकि जो पालने में है वही यहां है और जो यहां है वो पालने में है, और दोनों के बीच में जो आपको अभाव दिख रहा है भगवान ने दिखा दिया कि मां उस अभाव के अंदर भी वो तत्व है। वहां तो केवल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको हम अभाव कहते हैं उसके अंदर भी वो तत्व है, और इसी को बोलते हैं वहां देशकृत परिच्छेद नहीं है, वो हर देश में है, हर देश में। अच्छा, भगवान अमेरिका में किसी भक्त के सामने प्रकट हो सकते कि नहीं? क्यों मधु बाबू, क्यों डॉक्टर, हो सकते हैं कि नहीं? हाँ, और इतना दूर जाने के लिए फिर भगवान के लिए कोई वाहन की जरूरत पड़ेगी? मान लो कि कल चलकर हम मंगल पर पहुंच जाए, पहुंचेंगे मंगल पर, न भी पहुंचे तो हम किसी दूसरे ग्रह पर पहुंचेंगे। ये आज जो प्रयत्न है वो ईश्वरीय प्रयत्न है, आज से लाखों वर्ष के बाद, हजारों वर्ष के बाद ये पृथ्वी हमारे लिए रहने लायक नहीं रहेगी, और तब तक ईश्वर आयोजन कर चुका होगा, हमें दूसरे ग्रह पर भेजने का आयोजन कर चुका होगा। ये सारी जो खोजें हैं वो ईश्वर के संकल्प के अंदर है, बाहर नहीं है, और हम किसी दूसरे ग्रह पर जा चुके होंगे और वहां मंदिर भी बना चुके होंगे और वहां बैठ के सत्संग भी कर रहे होंगे पक्का। ये समस्ती दुनिया अनंत काल है, इसमें सारी ईश्वरीय रचना है, और उस समय यदि भगवान को प्रकट होना होगा तो क्या फिर इनको पृथ्वी से द्वारका पहुंचना होगा? क्या द्वारका सिवा मंगल अन्य ग्रहों पर पहुंचना होगा? नहीं, वो वहां पर भी वो तत्व है। आप उसको किसी भी एक देश में सीमित नहीं कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी वेदांत की फिलोसफी है, वो हर देश में, हर देश में। वो नरक में होगा कि नहीं? स्वर्ग में तो है ही, आपको संदेह नहीं है? आपको बिल्कुल संदेह नहीं, वो स्वर्ग में जरूर है, लेकिन जिसको आप नरक बोलते उसमें होगा कि नहीं? हो, उसमें भी है। और यही कारण है वो देशाक्रांत नहीं है। देशाक्रांत माने किसी देश में है और किसी देश में नहीं है, ऐसा नहीं। और तीसरी चीज, वो कालाक्रांत भी नहीं है, काल परिच्छेद, उसको काल परिच्छेद बोलते हैं। काल परिच्छेद माने किसी काल में होना और किसी काल में नहीं होना। जैसे अभी हम वर्तमान काल में हैं, कि सारी जन्य वस्तुएं एक काल में रहती हैं, केवल जो जन्य वस्तुएं हैं, जैसे अभी ये मकान है वर्तमान काल में, सुदूर भविष्य में हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, और अतीत में भी हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, केवल वर्तमान में। ऐसे आत्म तत्व नहीं है, आत्म तत्व हर काल में है, वो अतीत में भी, वर्तमान में भी, भविष्य काल में भी। 90 नैयायिकों ने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया, जन्यानाम जनक कालो जगताम आश्रयो मता। काल की अवधारणा उन्होंने बहुत सुंदर दी, उन्होंने कहा कि ये काल, ये समय जन्यानाम जनक, दुनिया की हर वस्तु को पैदा करने वाला है। ये समय बड़ा बलवान, ऐसा बोलते ही नहीं आप, समय बड़ा बलवान, ये समय परिवर्तित कर देता है, आदमी को बदल देता है, आदमी को बना देता है। इसलिए जन्यानाम जनक, उन्होंने तो यहां तक बोला समय से वस्तु पैदा होती है, समय वस्तु को बदल देता है, पैदा करता है। ऋतु आए फल होए, ये समय है, माली कितना भी पानी डाले, कितना भी खाद डाले, लेकिन समय की अपेक्षा है। आप कितनी भी अच्छी दवा दें, वो दवा भी जो काम करते हैं वो समय के हिसाब से है। ऐसा नहीं होता कि आपने दवा खाई और जादू की तरह मलेरिया गायब, ऐसा होता है क्या? डॉक्टर बोलते भैया ये 15 दिन दवा खा लीजिए, आप 10 दिन खा लीजिए, समय है। क्योंकि हर चीज के लिए उसको बदलने के लिए समय की अपेक्षा है। हम समय के बिना बदलना चाहते हैं, हम बहुत शीघ्र तर बदलना चाहते हैं। हाँ ये बात अलग है, बहुत ज्यादा अच्छी दवा है तो वो कम दिन में बदल देगी, लेकिन दिन तो चाहिए, उसके लिए समय तो चाहिए, रिकवरी के लिए समय चाहिए। इसलिए जन्यानाम जनक काल, उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी चीज है, किसी भी चीज को पैदा करने के लिए उसको समय की जरूरत है, समय की जरूरत है। बिना समय कोई चीज बदलती नहीं। लेकिन ये बदलाव की जो प्रक्रिया है ये आत्मिक नहीं है, अनात्मिक है। ये परिवर्तन की जो प्रक्रिया काल के द्वारा, ये अनात्मा में परिवर्तन, आत्मा में नहीं है। जो परमात्मा का मूलभूत स्वरूप है, अखंड चिदैक रस सच्चिदानंद, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं। अच्छा, 10,000 वर्ष पहले जैसी पृथ्वी थी क्या वैसी आज है? बहुत कुछ बदल गई। आप इस पृथ्वी को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये पृथ्वी कम से कम 80-90 साल तक जी चुकी है। आप इस प्रकृति को देखना, यहां की नदी नाले पर्वत पहाड़, तो ऐसा लगता है किसी आप आदमी को देख लेना। और आदमी को देखने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि अपने जीवन के इतने वर्ष जो जी चुका होगा। आप एक बच्चे को देख के बोल सकते भैया ये तो 5 साल का बच्चा होगा। आप किसी बच्चे को देख करके बोल सकते हैं भैया ये 10 साल का होगा, ये 25 साल का होगा। ये भी बोल सकते हैं 50 साल का है, ये 80 साल का होगा। ओहो, इसकी उम्र तो बहुत ज्यादा है, 100 साल का हो सकता है। ऐसा आप पृथ्वी को देखना, आप इस पृथ्वी को देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि अपने जीवन की उम्र 80 साल तक, कम से कम 80 साल तक जी चुकी है। अब वो 10-20 साल है इस पृथ्वी के जीवन के, 10-20 साल, अब वो भी लाखों वर्ष होंगे। तो आप में इसमें परिवर्तन मालूम पड़ता है, लेकिन परमात्मा में कोई परिवर्तन? ये पृथ्वी पैदा हुई उस समय भगवान कैसे होंगे और आज भगवान कैसे होंगे? जो तत्व है, जो ब्रह्म तत्व आत्म तत्व, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। वो वस्तु का अंग नहीं है, ये दुनिया के पदार्थ का अंग नहीं है। वो यदि अनात्मा होते, अनात्मा का हिस्सा होते भगवान, तो उसमें परिवर्तन जरूर होता। इसलिए इसको पुराण बोला है। पुराण, पुराण का अर्थ है बहुत पुराना, और इतना पुराना होते हुए भी अरे बिल्कुल नया। अच्छा, आपके पास सोना जो है, सोना अभी आज धनतेरस है, थोड़ा सोने की भी चर्चा हो जाए आज धनतेरस है, थोड़ा सोने की भी चर्चा हो। आपके पास सोना है, प्रत्येक माताओं के पास तो है ही, यहां पुरुषों के पास न भी हो, सोने का काम माताओं के पास, पुरुषों को कहां नहीं डांटती है, ये तो अपनी टेंशन में है। और इसलिए बहुत गहरी बात, आप देखना माताएं अक्सर गंजी नहीं मिलती हैं, पुरुष बहुत गंजे मिलते हैं आप देख लेना, यहां भी आप देख सकते हैं अक्सर डॉक्टर कि पुरुष लोग बहुत जल्दी गंजे हो जाते हैं और माताएं नहीं होते, उसका कारण भी शायद यही होगा, उनके पास सोना है निश्चिंत है वो, कोई चीज है, और इसीलिए वो आराम से सो भी जाती है। पुरुष नहीं सो पाता, टेंशन है, डिप्रेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपके पास जो सोना है वो कितना पुराना है? आपने जब खरीदा था 40 साल पहले, तो आप जब दुकानदार के पास ले जाओगे तो क्या वो बोलेगा कि ये तुम्हारा सोना 40 साल पुराना है? वो आज का है, आज का, आज का। वो जब भी बिकेगा आज के भाव में बिकेगा, वो जब भी बिकेगा आज के भाव में बिकेगा, क्योंकि वो सोना है, वो पुरान है। पुरान 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 का मतलब ये होता है जो बहुत पुराना है, 40 साल पहले खरीदा है उसको, और उसके बाद भी नया है, वो सोना है भैया, वो सोना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसे परमात्मा जो आत्म तत्व है वो बहुत पुराना है, और इतना पुराना होते हुए भी वो नया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ता है, और इसीलिए उसको महाकाल बोला है। काले न अनवच्छेदात, पतंजलि कहते स पूर्वेशम अपि गुरु हूं, काले न अनवच्छेदात। वो परमात्मा सबका गुरु है, सबको मार्ग दिखा देता है। सबका गुरु क्यों है? अरे बोले भैया हमेशा वही रहता है, काले न अनवच्छेद, इसलिए महाकाल बोलते ही नहीं। आप भगवान शिव का नाम है महाकाल, क्योंकि काल उसका कुछ बिगड़ता ही नहीं है, बिगाड़ता नहीं है काल, इसलिए कालकृत परिच्छेद परमात्मा में नहीं है। और कालकृत परिच्छेद नहीं, इसीलिए वो न जाए थे। यदि पैदा होता ना तो काल उसको पैदा करता, जिलाता और उसको मिटा देता। आचार्य यम ने कहा कि न जाए थे, काल परिच्छेद नहीं है, देश परिच्छेद नहीं है, वस्तु परिच्छेद नहीं है, न जाए थे नाम रियते वा कदाचित। वो न पैदा होता है और न वो मरता है। लेकिन अब एक शब्द का प्रयोग किया, विपश्चित। कल तो मैं बहुत इसकी बातें विस्तृत आपको सुनाई, अभी विपश्चित शब्द का प्रयोग किया है। भगवत गीता में कदाचित शब्द का प्रयोग किया है, वहां गीता जी ये श्लोक दोनों एक ही हैं, केवल एक ही अक्षर का अंतर है। वहां कदाचित नहीं, यहां विपश्चित। वहां कदाचित काल का द्योतन करता है शब्द, और यहां विपश्चित आत्मा का, और विशेष रूप से साधक का दिग्दर्शन करता है। विपश्चित ये जो शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आपको तीन अर्थ आपके सामने रखते हैं। विपश्चित का अर्थ होता है विशेषेण पश्यति इति विपश्चित, जो विशेष रूप से देखता है वो विपश्चित है। अब आपको जो इसका चिंतन करना है, एक साधक बन के चिंतन करना है। हमारे जीवन की जो अनुभूति है वो शरीर होने की अनुभूति है, आत्मा होने की अनुभूति नहीं है। आपको जब अपना परिचय कोई पूछता है और आप चट से अपना परिचय देते हैं, वो शरीर का परिचय होता है कि आत्मा का परिचय होता है? वो शरीर का परिचय होता है, क्योंकि आज हमारे भीतर आत्मा होने की अनुभूति नहीं है, शरीर होने की अनुभूति। और ये जो बात कह रहे हैं आचार्य यम, ये शरीर होने की बात है कि आत्मा होने की बात है? आत्मा होने की बात है। इसलिए आत्मानुभूति, आत्म तत्व मैं न कभी मरता पैदा होता हूं और न कभी मरूंगा। और इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए, इस अनुभव को प्राप्त करने वाला साधक और उसका दिग्दर्शन करने के लिए इन्होंने बोला विपश्चित माने विशेष न पश्यति, माने जो विशेष रूप से अपने आप को देखता है। अब यहां विशेष रूप से अपने आप को देखता है, वो पैदा नहीं होता है, वो मरता नहीं है। अब आप अपने आप को विशेष रूप से क्या देखते हैं? अब यही विशेष बात उन्होंने बोली, बोले आत्म तत्व, वो आत्म तत्व न पैदा होता है और न मरता है, जिसको विशेष रूप से साधक देखते हैं। अब आप साधना करो, आप श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, अपने आप को शरीर से अलग समझो। यहां समझना है हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है, सबसे महत्व की कोई चीज है, तो वो समझ है। आप क्या है ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, आप अपने आप को क्या समझते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या है ये बहुत बड़ी बात नहीं, आप अपने को समझते क्या है, क्योंकि समझ के बाद ही हमारा आचरण होता है। वो चीज, वो समझ हमारे अंदर ना हो तो हमारा आचरण संभव नहीं। एक में उदाहरण आपको पिछली बार भी सुनाया था, हमारे आश्रम के आदरणीय डॉक्टर स्वामी जी एक अक्सर दृष्टांत दिया करते हैं, पूज्य स्वामी गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज, बड़ा सुंदर दृष्टांत है। एक कोई डॉक्टर, एक व्यक्ति है, उसका नाम है मिस्टर जॉन, और पता नहीं उसको क्या हुआ, वो अपने आप को कीड़ा समझने लगा। हो सकता है आज हम अपने आप को मनुष्य समझ रहे हैं और कोई दिमाग की विकृति आ जाए और हम मनुष्य ना समझकर कुछ और समझने लग जाए। वो मिस्टर जॉन अपने आप को कीड़ा समझने लगा, और आपको तो मालूम है कि यदि व्यक्ति अपने को कीड़ा समझने लगे तो उसका आचरण कैसे होगा, कीड़ी की तरह होगा, वो कीड़ी की तरह रेंगने लगता, बिलबिलाने लगता। कोई मुर्गी या कोई पक्षी देखता तो उसको देख के भागने लगता कि ये कहीं मेरे को चूग न जाए, क्योंकि वो देखता मुर्गी कीड़े को चूग रही है, खा रही है, पक्षी कीड़ों को खा रहे हैं, वो देख लेता और वो सोचता कि मेरे को कोई पक्षी न खा जाए, वो भागता घर के अंदर आता। घर के लोग बहुत परेशान हो गए, उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गई, डॉक्टर के पास भेज दिया, एडमिट कर दिया, महीनों तक उसका इलाज हुआ और सब लोग प्रसन्न हुए कि मिस्टर जॉन अब अपने आप को मिस्टर जॉन समझता है। वो मनोचिकित्सक थे, उन्होंने बहुत सारी ट्रीटमेंट की, बहुत सारी सिटिंग्स उनको समझाया कि तो मिस्टर जॉन हो, दवाएं भी दी और मिस्टर जॉन समझने लगा कि मैं मिस्टर जॉन। घर के लोगों को भी उसने बताया कि मैं मिस्टर जॉन, सारी चीजें अब बहुत सारी चीजें ठीक हो गई, लोग प्रसन्न हुए, डिस्चार्ज लिया उन्होंने। और जब वो जाने लगे, गाड़ी का दरवाजा खोला और जब बैठने लगे, उन्होंने अपने पत्नी को बोला रुको रुको एक बात मैं डॉक्टर को पूछ के आता हूं। पत्नी ने कहा होगा कोई प्रश्न, दौड़ते हुए गए और डॉक्टर को बहुत सारा धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, कि मैं मिस्टर जॉन हूं, पहले मालूम नहीं था मिस्टर जॉन हूं, मैं समझ गया हूं, लेकिन एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया है और वो ये है कि मेरे घर के आसपास बहुत सारी मुर्गियां हैं और जब मैं वहां गाड़ी से उतरूं तो आप ये बताएं कि कहीं वो मुर्गियां मेरे को चूगने जाए, उस समय मेरे को क्या करना चाहिए, यदि वो मुर्गियां मेरे को खाने के लिए आए तो मेरे को बचना कैसे चाहिए। डॉक्टर ने कहा मिस्टर जॉन आओ और ये जो बेड तुम्हारा है ना इसको लेट जाओ, अभी तुम मिस्टर जॉन नहीं हो, तुम अभी कीड़े हो, अभी तुम्हारे अंदर वो फीलिंग पैदा नहीं हुई कि मैं मिस्टर जॉन हूं। हालत हमारी भी ऐसी ही है, हम सब लोग मिस्टर जॉन हैं और हम समझते हैं शरीर, हम समझते हैं कामी क्रोधी खली रागी द्वेषी और ये दुनिया की सारी चीजों में हम रेंग रहे हैं। और गुरु कहते हैं तुम आत्मा हो, तुम अनात्मा नहीं हो, तुम अजर हो, अमर हो, अखंड, एक रस, चिदात्मा, ब्रह्म आत्म तत्व। और कभी कभी हम बोलते भी हाँ 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 है, लेकिन वही डर कहीं मुर्गी चूक न जाए। हम आत्मा तो हैं और उसके बाद भी मृत्यु के भय, बहुत सारे भय प्रलोभन लगे हुए। इसलिए यहां पर आचार्य यम ने कहा आपको अजर अमर होने का यदि अनुभव करना है तो आपको समझना होगा विपश्चित माने विशेषेण पश्यति, साधना के द्वारा, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि के द्वारा जो अपने आप को समझता है, अपने आप को विशेष रूप से समझता है, देखता है और उस समय न जायते म्रियते वा कदाचिन, उस समय आपकी अनुभूति होगी कि मैं शरीर नहीं हूं, यदि मैं शरीर हूं तो पैदा हुआ हूं, मैं शरीर हूं तो मरने वाला हूं, आज यदि मैं शरीर से अलग समझता हूं तो मैं अजर हूं अमर हूं। इसलिए विशेष ही न पश्यति, विशेष साधना का दिग्दर्शन किया और यह विशेष न पश्यति साक्षी भाव आत्मा या विपश्चित माने आत्म तत्व। और थोड़ा आपको गहराई से इसको समझना है, या विपश्चित शब्द का अर्थ क्या, दोषज्ञ है, दोषज्ञ दोषज्ञ दोषान जानाति स्वान स्वम परान दोषान जानाति इति दोषज्ञ, जो अपने और दूसरे के दोषों को जानता है वो दोषज्ञ साधक है। हमें जानना है, अपने आप को जानना है, अपनी कमियों को जानना है, और जब तक आप अपने कमियों को नहीं जानेंगे तब तक उसको दूर करने का प्रयत्न भी तो नहीं करेंगे। इसलिए क्रमिक रूप से साधना का दिग्दर्शन भी इसमें है। हम जाने अपने आप को, उपकरणों को ठीक करें, बिना उपकरण ठीक हुए हम किसी चीज को देख नहीं सकते हैं। आपको देखना है, पढ़ना है आपका चश्मा, और उसके ऊपर यदि मैल आया है, मिट्टी आई है, उसके ऊपर भाप जम गई है, तो आप क्या करते हैं? उसको साफ करते हैं। आपका चश्मा जो है बहुत अच्छा है लेकिन उसके ऊपर भाप जम गई है, तो आप उसको साफ करते हैं। साफ करने के बाद आपको दिखाई देता है। ऐसे आत्म तत्व को देखना, अपने आप को ही देखना, अपने आप को ही देखने के लिए चश्मे की जरूरत है। हमें अपने को भी देखने के लिए भी चश्मे की जरूरत है, उपकरण की जरूरत है, सचमुच जरूरत है। आप कितना भी कहिए कि अपने आप को जानने के लिए कुछ की जरूरत नहीं है, जय कृष्णमूर्ति ने कहा जरूरत क्या है, जय कृष्णमूर्ति ने बोला गुरु की भी क्या जरूरत है, उपदेशों की भी क्या जरूरत है। अरे बोले अपने आप हो जाए, अरे अपने आप होगा कैसे? अपने आप को जानने के लिए भी गुरु की जरूरत है। हाँ, हो सकता है कि कोई आदमी बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुका है, गुरु के आश्रय से बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया, अब एक टक्का बाकी रह गया है और वो अपने आप हो गया होगा, लेकिन उस समय आप ये नहीं कह सकते कि गुरु के बिना हुआ। आपने कभी ध्यान दिया होगा, गांव में कभी गए होंगे आप, कभी मधुबाबू आपने तो कभी ऐसा नहीं किया होगा, पेड़ के आम तोड़ के खाए? कभी खाए? पत्थर मार मार के? डॉक्टर आप तो नहीं किए होंगे, किए। और वो बहुत मजेदार अनुभव है। और वो बच्चे अपना निशाना साधते, निशाना साधते, निशाना साधते, 10-20-50 जितने जब तक वो आम नहीं टूटेगा तब तक पत्थर मारते रहते हैं। लेकिन पत्थर लग जाता है, एक पत्थर लगा, आम गिरा। मैं पूछता हूं, आम आपने 100 मारे, पत्थर 100 मारे, आम एक गिरा एक ही पत्थर से, तो आपके जो 99 पत्थर व्यर्थ थे कि नहीं? फिर आपको तो ऐसा लगेगा कि वो 99 पत्थर व्यर्थ गए, तो आपने वो अकेला वो अंतिम वाला पत्थर क्यों नहीं मारा पहले? वो अंतिम वाला पत्थर आपने पहले क्यों नहीं मारा? फिर कितना अच्छा होता वो पत्थर, तो अंतिम वाला पत्थर ही उसी ने आम गिराया, तो आप अंतिम वाला पत्थर ही पहले में मारते तो पहले में आपको आम मिल जाता, आपको 99 पत्थर मारने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो अंतिम वाला जो पत्थर जिसने आम गिराया, जिसको सफलता मिली, वो सफलता का आधार वो पहला पत्थर भी है। आपने पहला पत्थर मारा और वो कितना दूर गया, कितनी दूरी से गया आपको मालूम पड़ा, उसकी दूरी आपने नाप ली, अंदाजा लगा, और आपने कई पत्थर मारे, कहीं इधर गया कहीं उधर गया, आपके दिमाग ने उसको नापा, अंदाजा लगाया, बहुत सारे अंदाजे लगाए, और अंतिम सफलता एक ही पत्थर से मिली। लेकिन उस पहले पत्थर को यदि आप हटाएं तो अंतिम पत्थर की सफलता की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो उस तत्व को समझने के योग्य बनाती हैं। आप जप करते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, आप परोपकार करते हैं, संत दर्शन करते हैं, आप मनन करते हैं, आप जो भी आध्यात्मिक मार्ग की तरफ बढ़ते हुए छोटे से छोटे काम करते हैं, वो भी आत्मोपलब्धि का आधार बन जाता है। ये आपके हमारे उपकरणों को, ये उपकरण तो यही है ना, मन मनसा एव इदम आप्तव्यम, उस तत्व को जानने के लिए मन ही तो उपकरण है। जैसे मैंने आपको कहा कि चश्मा, आपको अपने को ही देखना है तो आपको चश्मा चाहिए, और वो चश्मा मन है, आपकी बुद्धि है, बुद्धि माने समझ है, वो समझ के चश्मे से आप आत्मा को देखते हैं। इसलिए बुद्धि बहुत जरूरी है, अच्छा होना, मन अच्छा होना जरूरी है। इसलिए यहां पर दोषज्ञ, दोषों को जानना, अपने भीतर के दोषों को जाना, विपश्चित, विपश्चित माने दोषज्ञ, अपने भीतर के दोषों को जानकर उसको दूर करने का जो प्रयत्न करता है साधक, वो धीरे धीरे आत्म अंतकरण शुद्धि के द्वारा, चित्त की शुद्धि के द्वारा आत्मोपलब्धि को प्राप्त करता है और समझता है कि मैं आत्मा न जायते न मिलते। इसलिए ये जो शब्द है विपश्चित बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां दोषों को जानना है बाहर की नहीं, दूसरे की नहीं, अपने। यह महत्वपूर्ण बात यही है। विपश्चित का अर्थ दोषज्ञ है, लेकिन दोषज्ञ किसके दोष जानना, स्वयं के, नहीं तो आप गलत अर्थ कर लेंगे। यहां दोषों को तो हम जानते हैं, लेकिन हम अपने जानते हैं कि दूसरे के जानते हैं। कल मैंने आपको बोला था कि हम ठीक करना चाहते हैं अपने को कि दूसरे को। हम जरूर ठीक करना चाहते हैं, हर आदमी टेक्नीशियन है, हर आदमी कुछ करना चाहता है, लेकिन वो बदलना दूसरे को चाहते हैं कि अपने को। आदमी दूसरे को देखते हैं, बदलना दूसरे को चाहते हैं, लेकिन यहां पर अपने को देखना है, बदलना अपने को है, अपने को बदलना है। और जब हम अपना उपकरण जो मन है, बुद्धि है, उसको शुद्ध कर लेते हैं, और उसके बाद फिर उस शुद्ध बुद्धि के द्वारा दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनी, साधना के द्वारा शुद्ध और सूक्ष्म हुई बुद्धि के द्वारा जो आत्म तत्व को जानता है, किस रूप में, न जायते म्रियते वा कदाचिन, अच्छा आत्मा अजर अमर है, वो कभी पैदा होने वाला नहीं, कभी वो मरने वाला नहीं, तो आपको क्या है। मैंने आपको बोला ना अभी, आप क्या है ये बड़ी बात नहीं, आप अपने को समझते क्या है ये बड़ी बात है, और आपके समझ के हिसाब से आपका आचरण होता है। अच्छा, मैं कभी इंजेक्शन लगाने के लिए कहीं प्रवृत्ति नहीं हो सकता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं डॉक्टर नहीं हूं, और मेरे अंदर यदि झूठ मूठ का भ्रम हो जाए कि मैं डॉक्टर हूं, तो हो सकता है कि मैं सुबह उठते ही किसी को इंजेक्शन लगाने के लिए चल पड़ू। क्योंकि समझ है, वो समझ के हिसाब से क्रिया होती है। चोर आदमी को मालूम है कि मैं चोर हूं तभी चोरी करता है, साधु को मालूम है कि मैं साधु तभी तो माला लेके बैठता है, आपको मालूम है कि हम सत्संगी हैं इसलिए उठते आप चल पड़ते हैं, सत्संग में बैठते हैं। इसलिए बोध बहुत जरूरी है, समझ बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे शास्त्र ने समझ को, ज्ञान को बहुत महत्व दिया। इसलिए विपश्चित शब्द का अर्थ यही है, जो समझदार, ज्ञानी, साक्षी, इस पथ पर चलकर आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध होने की साधना करने वाला साधक। इसलिए इसका द्योतन करने के लिए आचार्य हमने यह शब्द का प्रयोग किया, विपश्चित। नायम कुतश्चित न भगव कश्चित। अब हम कल करेंगे, कल इस श्लोक को पूरा कर ही लेंगे, अभी आप सीधे बैठ जाएं। ओम ह्रीम नमः शिवाय, 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 ओम ह्रीम नमः शिवाय।
ओम ह्रीम नमः शिवाय, 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 ओम शांति शांति शांति।